और फिर यहाँ आकर आपने कुरैश को हुक्म दिया कि मक्का बिल्कुल खाली कर दो, पहाड़ों में चले जाओ। कहकर आप रदी अल्लाह अन्हु अपने साथ कुरैश के कुछ लोगों को लेकर काबे में आए और काबे का दरवाजे का कुंडा थाम कर रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआएं मांगना शुरू की कि बारी ताला अबरहा और इसके खूंखार लश्कर से अपने पाक और इज्जत वाले घर को बचा ले। नाजरीन, आज हम दिनों का यानी डेज का हिसाब रखने के लिए ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं और इस्लामी एतबार से हिजरी कैलेंडर यानी इस्लामिक कैलेंडर को, जिसका आगाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के से मदीना हिजरत करने के बाद हुआ। मगर आपने कभी सोचा है कि हिजरत से पहले के दिनों का हिसाब कैसे रखा जाता था? इन वक्तों में दिनों का हिसाब मशहूर वाकियात से रखा जाता था कि उस वाकये से इतने दिन पहले ये हुआ, इस वाकये के इतने महीनों बाद ये हुआ। आज हम जिस तारीखी दुश्मन, हिस्टोरिक दुश्मन के बारे में सुनने जा रहे हैं, उसका वाकया भी तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस वाकये से भी दिनों का हिसाब लगाया जाता था। हम जिस वाकये की बात कर रहे हैं उसका नाम है वाकया अस्हाब फील, और हमारी आज की वीडियो का तारीखी दुश्मन भी है जिसका नाम है अबरहा। नाजरीन, अगर हम अबरहा का बैकग्राउंड जाने तो हमें पता चलता है कि ये हबशा की उस फौज का कमांडर था जो बादशाह रोम के हुक्म पर 500 ईस्वी में हबशा के गवर्नर नज्जाशी ने यमन के ईसाइयों की मदद के लिए भेजी थी ताकि वो यहूदी हाकिम ज़ू नवाज़ से जंग कर सके। उस जंग का बैकग्राउंड और डिटेल काफ़ी लंबी है और हम अपने टॉपिक से भी हट जाएंगे तो उसकी तरफ अभी नहीं जा रहे। खैर, 70,000 सिपाहियों वाले उस हबशी लश्कर के सिपाही सालार अरियात ने यूसुफ ज़ू नवाज़ से जंग की। उस जंग में उसे हराया और यमन का इंतज़ाम संभाल लिया। इस फतह के बाद सारे यमन में शाह हबशा का कब्जा हो गया और ये दोनों सरदार यानी अरियात और अबरहा यहाँ यमन में ही रहने लगे। वक्त गुजरता रहा, कुछ टाइम पीरियड बाद इनमें आपस में इख्तिलाफ़ होने लगा और आखिर नौबत यहाँ तक पहुँचाई कि दोनों ने आमने सामने सफ़े बांधी और एक दूसरे से लड़ने के लिए निकल आए। लेकिन अपनी अपनी फ़ौज को लड़ाने से पहले दोनों ने आपस में ये डिसाइड कर लिया कि फ़ौजों को लड़ाने और कत्ल कराने की क्या ज़रूरत है, आओ हम तुम दोनों मैदान में निकलें और एक दूसरे से लड़कर फैसला कर लें, जो जिंदा बच जाएगा मुल्क व फौज उसकी। इस बात पर दोनों एग्री हो गए और फिर दोनों मैदान में आ गए। अरियात ने अबरहा पर हमला किया और तलवार से एक ही वार में उसका चेहरा खूनम खून कर दिया। अरियात के वार से अबरहा की नाक और होंठ और मुंह तीनों चीज़ें कट गईं। ये देखकर अबरहा के गुलाम को जोश आया और उसने मौका पार कर अरियात पर एक ज़ोरदार हमला करके उसे कत्ल कर दिया। इस तरह अबरहा जिंदा बच गया और अरियात मर गया। अबरहा जख्मी होकर मैदान से जिंदा वापस आया। इलाज के बाद उसके जख्म भी सही हो गए और यूं वो यमन का बादशाह बन बैठा। नज्जाशी यानी हबशा के बादशाह को जब इस वाकये का पता चला कि उसके दोनों सरदार आपस में लड़ रहे हैं और उनमें से एक तो मर भी चुका है, तो वो अबरहा पर सख्त गुस्सा हुआ और उसने अबरहा को एक ख़त लिखा जिसमें उसे बड़ी लानत और मलामत की और कहा, अल्लाह की कसम मैं तेरे शहरों को बर्बाद कर दूंगा और तेरी चोटी काट कर लाऊंगा। ये उन लोगों का पहले का तरीका था कि वो दुश्मनों को मारने के बाद उनकी चोटी के बाल काट लेते थे, ये एक फतेह की यानी जीतने की निशानी होती थी। नाजरीन, अबरहा एक चालाक और मक्कार आदमी था। इसे नज्जाशी को ये यकीन दिलाना था कि वो नज्जाशी के खिलाफ नहीं है और अभी भी उसी के अंदर है। सो उसने नज्जाशी को ख़त का जवाब बहुत आजी से लिख कर दिया। उसने पैगाम लाने वाले को बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए, एक थैली में यमन की मिट्टी भरकर दी और अपनी पेशानी के बाल काट कर उसमें रख दिए और ख़त में अपनी गलतियों की माफ़ी मांग कर लिखा कि ये यमन की मिट्टी हाजिर है, यानी यमन आप ही का है और मेरी चोटी के बाल भी हाजिर हैं, आप अपनी कसम पूरी कीजिए और नाराज़गी माफ़ फरमाइए। अबरहा की आजी देखकर नज्जाशी का गुस्सा ठंडा पड़ गया और फिर उसने यमन की सरदारी इसी के नाम कर दी। कुछ वक्त गुजरने के बाद अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए उसने नज्जाशी को ख़त लिखा कि मैं यहाँ यमन में आपके लिए एक ऐसा चर्च बनवा रहा हूँ जैसा दुनिया में कहीं बनाना होगा। बादशाह को लेटर लिखने के बाद उसने यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाना शुरू कर दिया जिसकी मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं थी। उस चर्च की कंस्ट्रक्शन कई सालों में जाकर कंप्लीट हुई। उस चर्च की तामीर के लिए अबरहा ने यमन के लोगों को बेपनाह तशद्दुद किया। उन पर हज़ारों लोगों को पकड़कर उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई गई। उन्हें हुक्म दिया जाता कि सूरज निकलने से पहले काम पर आ जाएं, जिससे ज़रा सी देर हो जाती उसका हार्ट तक काट दिया जाता। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल्स के लिए यमन की पुरानी और फेमस मलकाए बिल्कीस के अजीम शान महल तक को तोड़ फोड़ दिया गया। सोने चांदी का सामान, संगे मरमर और लकड़ी सब कुछ इकट्ठा करके चर्च में लगा दिया गया। अबरहा की इन हरकतों और जुल्म सितम की वजह से खुद यमन के लोग भी इससे नफरत करने लगे थे। उस चर्च की इमारत इतनी बुलंद थी कि उसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर नज़र करने से टोपी गिर जाती थी, इसलिए अरब उसे कुलैस कहते थे, यानी टोपी गिरा देने वाला। जब उस चर्च की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई तो अबरहा को एक नया आइडिया सूझा उससे, और वो ये आइडिया ये था कि जिसकी वजह से अबरहा का बुरा अंजाम हुआ और उस पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया जो कयामत तक नहीं भुलाया जा सकता। अबरहा को ये शैतानी ख्याल आया कि लोग बजाय काबतुल्ला के हज के इस चर्च का हज करें। उसने अपने इस इरादे का इजहार नज्जाशी को लिखे एक ख़त में भी किया। उसने नज्जाशी बादशाह को लिखा कि मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक अरब हज के लिए भी इसी चर्च का रुख ना करने लगें, यानी अरब के लोग हज करने के लिए इस चर्च पर आएं। फिर इसने लोगों में ये ऐलान भी करवा दिया कि अब से लोग हज करने के लिए चर्च पर आएं। उधर अरब को जब इस बात का पता चला तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा। कुरैश ने इस बात पर भड़क उठे कुरैश के लोग, क्योंकि काबे की मोहब्बत उनकी रग रग में बसी हुई थी। इसी मोहब्बत और गैरत की वजह से कुरैश का एक जोशीला नौजवान मौका पा कर इस चर्च में घुसा और वहाँ गंदगी करके आ गया। चौकीदार ने जब ये देखा तो बादशाह अबरहा को खबर पहुँचाई और कहा कि ये काम कुरैशों का है, चूँकि आपने इनके काबे पर हज करने से मना कर दिया है इसलिए इन्होंने गुस्से में आकर ये हरकत की है। ये सुनकर अबरहा भड़क उठा और उसने कसम खाई कि मैं मक्के पहुँचूँगा और काबे को तोड़ूंगा। सो इसी इरादे से अबरहा ने बहुत बड़ा लश्कर साथ लेकर मक्के पर चढ़ाई की ताकि कोई रोक ना सके, और इसने अपने साथ एक बहुत बड़ा ऊंचा और मोटा हाथी लिया जिसे महमूद कहा जाता था। इस जैसा हाथी उस वक्त कोई और ना था। शाह हबशा ने यह हाथी इसके पास खास इसी मकसद से भेजा था। 8 या 12 हाथी और भी इसके साथ थे। इन हाथियों के साथ ये काबे को गिराने के इरादे से चला। ये सोचकर कि काबे की दीवारों में मजबूत जंजीरें डालूंगा और हाथियों की गर्दनों में इन जंजीरों को बांध दूंगा, हाथी एक ही झटके से चारों दीवारें बैतुल्ला की जड़ से उखाड़ देगा। जब अहले अरब को अबरहा के हमले के बारे में पता चला तो उस पर उनका बहुत बड़ा और भारी असर हुआ। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, हम ज़रूर इससे मुकाबला करेंगे और इसके इस मकसद में इसे कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, उस वक्त प्रैक्टिकली अरबों में अबरहा से मुकाबला करने की ताकत और बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद दो सरदारों ने अपने इलाके में इसका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर वो दोनों इससे हार कर गिरफ्तार हुए, जिससे अबरहा का खौफ और मजीद फैल गया। अबरहा का लश्कर जब ताइफ के करीब पहुंचा तो कबीला सकीफ ने इससे सुलह कर ली, इस खौफ से कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके बुत खानों को, जिसमें लात नामी बुत भी था, ये तोड़ दे। अबरहा भी इनसे नरमी से पेश आया क्योंकि उसे एक बंदा चाहिए था जो इसे काबे तक पहुंचा सके। तो सकीफ वालों ने अबरहा के साथ अपना एक आदमी कर दिया कि ये तुम्हें वहां तक ले जाएगा। तो इस तरह अबरहा बिना किसी रोक टोक के मक्के के करीब पहुंच गया। इसकी फौज ने शहर के इर्द गिर्द के इलाकों में लूटमार की और इस लूटमार में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु के भी 200 ऊँट आ गए। इसी दौरान अबरहा ने मक्के वालों के पास अपना एक कासिद मैसेंजर भेजा कि मक्के के सबसे बड़े सरदार को मेरे पास ले आओ और ये भी ऐलान कर दो कि मैं मक्के वालों से लड़ने नहीं आया, मेरा इरादा सिर्फ काबे को गिराने का है। हाँ, अगर मक्के वालों ने इसको बचाने की कोशिश करी तो मुझे इनसे जंग करनी पड़ेगी। कासिद जब मक्के में आया और लोगों से मिला जुला तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ के बड़े सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम रदी अल्लाह तआला अन्हु। कासिद आप रदी अल्लाह अन्हु से मिला और आप तक अबरहा का पैगाम पहुँचाया, जिसके जवाब में आप रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह की कसम, ना हमारा इरादा अबरहा से लड़ने का है, ना हम इतनी ताकत रखते हैं, ये अल्लाह की हुरमत वाला घर है, इसके खलील हजरत इब्राहिम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदा यादगार है ये, अगर अल्लाह चाहेगा तो अपने घर की खुद हिफाजत करेगा, वरना हम में तो ना हिम्मत है ना कुव्वत है। कासिद ने कहा, अच्छा तो आप मेरे साथ बादशाह के पास चलिए। आप रदी अल्लाह अन्हु कासिद के साथ अबरहा के पास पहुँचे। नाज़रीन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह अन्हु की पर्सनैलिटी बहुत रूपदार थी। आप हसीन चेहरे वाले, खूबसूरत और दिखने में ताकतवर महसूस होते थे। यही वजह है कि अबरहा ने आपको देखा तो देखते ही आपके रोब में आ गया, वो तख्त से नीचे उतर आया और फर्श पर आपके साथ बैठ गया। फिर उसने अपने ट्रांसलेटर से कहा कि इनसे पूछ कि ये क्या चाहते हैं। आप रदी अल्लाह उन्होंने जवाब दिया कि मेरे 200 ऊँट जो बादशाह ने ले लिए हैं उन्हें वापस कर दिया जाए। अब्रहा ये सुनकर हैरान हो गया कि मैं यहाँ इनके सबसे बड़े इबादत खाने को गिराने आया हूँ और इन्हें अपने ऊँटों की फिक्र है। इसने आपसे कहा कि पहली नज़र में आपका रोब मुझ पर पड़ा था और मेरे दिल में आपकी अहमियत बैठ गई थी, लेकिन पहली ही बात में आपने मेरे दिलो दिमाग से अपनी अहमियत खो दी। आपको अपने 200 ऊँट की तो फिक्र है, लेकिन अपने और अपनी कौम के दीन की फिक्र नहीं है। मैं तो तुम लोगों का इबादत खाना तोड़ने और इसे खाक में मिलाने के लिए आया हूँ, और आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे। अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह उन्होंने जवाब दिया कि सुन बादशाह, ऊँट तो मेरे हैं, इसीलिए मैं इन्हें बचाने की कोशिश में हूँ, और खाना काबा अल्लाह का घर है, वो खुद इसे बचाएगा। इस पर अल्लाह के दुश्मन अब्रहा ने कहा कि अल्लाह भी आज इसे मेरे हाथ से नहीं बचा सकता। माज अल्लाह, आप रदी अल्लाह उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तू जाने और वो जाने। नाज़रीन, किताबों में ये भी आता है कि मक्के वाले ने तमाम लोगों का तिहाई माल यानी 1/3 माल अब्रहा को देना चाहा कि वो सब ये माल लेकर अपने इस बुरे इरादे से पीछे हट जाए, लेकिन उसने इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की और अपनी जिद पर अड़ा रहा। खैर, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों को लेकर वहाँ से लौट आए और फिर यहाँ आकर आपने कुरैश को हुक्म दिया कि मक्का बिल्कुल खाली कर दो, पहाड़ों में चले जाओ। ये कहकर आप रदी अल्लाह उन्हों अपने साथ कुरैश के कुछ लोगों को लेकर काबे में आए और काबे का दरवाजे का कुंडा थाम कर रो रो कर और गिड़ गिड़ा कर अल्लाह पाक से दुआएं मांगना शुरू की कि बारी ताला अब्रहा और इसके खूंखार लश्कर से अपने पाक और इज्जत वाले घर को बचा ले। आपने ये भी अर्ज़ की कि या अल्लाह, हर घर वाला अपने घर का बचाव खुद करता है, तू भी अपने घर को अपने दुश्मनों से बचा। ये दुआएं मांगकर आप रदी अल्लाह उन्होंने बैतुल्ला के दरवाजे का कुंडा हाथ से छोड़ दिया और फिर अपने तमाम साथियों के साथ आप उस पहाड़ों की चोटियों पर चले गए। इस वाकये की दूसरी सुबह अब्रहा के लश्कर में काबे पर हमले की तैयारियां होने लगी। अपने खास हाथी जिसका नाम महमूद था, अब्रहा ने उसे तैयार किया और मक्के की तरफ इसका मुँह उठाकर चलने की तैयारी की। उस वक्त न जाने महमूद को क्या हुआ कि वह अचानक बैठ गया। अब हजार कोशिशें की गईं कि किसी तरह महमूद खड़ा हो जाए। अब्रहा भी लगा हुआ था, लश्करी लोगों ने भी कोशिश करते रहे, कर कर के थक गए, लेकिन हाथी अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। हाथी था, आसान तो नहीं था कि उसको हिलाना। सर पर डंडे मारे गए, इधर उधर से भाले और बर्छे मारे गए, आंखों में चीजें डाल रहे थे इसके कि किसी तरह खड़ा होकर चल ले, लेकिन वो अपनी जगह से उठने का नाम नहीं ले रहा था। तमाम तरीके अपना लिए, तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन महमूद टस से मस ना हुआ। फिर चेक करने के लिए कि मसला क्या है, इसका मुंह यमन की तरफ किया गया, तो जैसे ही मक्के की डायरेक्शन से इसका मुंह फिरा, वो झट से खड़ा होकर दौड़ता हुआ चल दिया। फिर शाम की तरफ चलाना चाहा, फिर भी वो पूरी ताकत से चलने आगे बढ़ गया। ईस्ट की तरफ ले जाना चाहा, वो फिर भी भागा भागा वहाँ पर चल दिया। फिर अगेन मक्के की तरफ उसका मुँह करके आगे बढ़ाना चाहा, वो फिर वहीं बैठ गया। उन्होंने फिर इसे मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान अब्रहा क्या देखता है कि समुंदर की तरफ से आसमान पर काले रंग के परिंदों का हुजूम है, जिनका सीना यानी नीचे की तरफ से वो सफ़ेद हैं, बादल की तरह चला आ रहा है। नाज़रीन, ये अल्लाह की फ़ौज थी अबाबील, जो अल्लाह के दुश्मनों पर अल्लाह का अजाब लेकर आई थी। अबाबील की फ़ौज ने अब्रहा की फ़ौज को चारों तरफ से घेर लिया। हर परिंदे के पास तीन तीन छोटे छोटे पत्थर थे, दो पंजों में थे और एक मुँह में, और हर पत्थर पर मरने वाले का नाम भी लिखा हुआ था। नाजरीन, अब्रहा और उसकी फौज अभी इसी सोच में थी कि क्या है और कहाँ से आ रहे हैं ये सब। इसी दौरान उन अबाबीलों ने उन पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। पत्थर जिस हाथी सवार पर गिरता, यानी हाथी पर बैठने वाले पर गिरता, उसकी लोहे वाली जंगी टोपी तोड़कर सर में घुसता और जिस्म को चीरता हुआ हाथी तक पहुँचता और फिर हाथी के जिस्म में सुराख करते हुए ज़मीन पर गिर जाता। पूरे लश्कर का यही हाल था, पूरा लश्कर तितर बितर हो गया। कोई बचने के लिए कहीं भाग रहा था तो कोई कहीं, कुछ जो इधर उधर भाग भी निकले, बचा उनमें से कोई भी नहीं। भागते भागते इनके जिस्म के आज़ा यानी बॉडी पार्ट्स कट कर गिरते जा रहे थे। इसी तरह अब्रहा का पूरा लश्कर हलाक हो गया। अब इस तारीखी दुश्मन अब्रहा का क्या हाल हुआ? अपने सरों पर पत्थर पड़ता देखकर वो भी जान बचाने के लिए मक्के से दूर भागा, लेकिन उस भागने ने भी उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। उसका जिस्म का एक एक हिस्सा उसके जिस्म से झड़ना शुरू हो गया, यहाँ तक कि वो यमन में अपने शहर सना तक पहुंचा तो वो बिल्कुल गोश का लोथड़ा बना हुआ था। वहीं पर बिलक बिलक कर उसका दम निकला, और कहते हैं ना कि कुत्ते की मौत मरना, वही हाल हुआ इसका। मौत के वक्त इसका दिल तक फट गया। कुरैशियों को बड़ा माल हाथ लगा, कुछ लोगों के कुएं सोने से भर गए, उस माल से जो अबरहा छोड़कर भागा था। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में सूरह फील में इस वाकये को जिक्र फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या इसने इनके मकर व फरेब को तबाही में ना डाला और इन पर फौज दर फौज परिंदे भेजे जो इन्हें कंकर के पत्थरों से मारते थे, तो इन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह कर दिया।